नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक को नौकरी जाने की आशंका है, जबकि 4 में 3 बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं। इसके बावजूद करीब आधे लोगों का मानना है कि 2023 में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। विपणन आंकड़ा एवं विश्लेषण कंपनी कांतार के सर्वेक्षण में ये निष्कर्ष निकाला गया है। भारत आम बजट सर्वे के दूसरे संस्करण में कांतार ने पाया कि उपभोक्ता आयकर के संबंध में नीतिगत परिवर्तनों की घोषणा की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा 2.5 लाख रुपए की बुनियादी आयकर छूट की सीमा सबसे आम उम्मीद है। कांतार ने कहा, व्यापक आर्थिक स्तर पर ज्यादातर लोगों की सोच सकारात्मक है। 50% का मानना है कि साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 31% को लगता है कि इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। 54% के साथ छोटे शहरों में धारणा महानगरों की तुलना में अधिक सकारात्मक है। हालांकि इसमें कहा गया कि वैश्विक आर्थिक मंदी और COVID-19 का प्रकोप फिर शुरू होने की आशंका भारतीयों को सता रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि डेटा और उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी के प्रसार के लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री की ये टिप्पणी देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के हाल ही में न्यूनतम मासिक रिचार्ज योजना को लगभग 57% तक बढ़ाने की पृष्ठभूमि में आई है। चंद्रशेखर ने कहा, डेटा या उपकरणों की लागत में वृद्धि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे डिजिटलीकरण में बाधा पहुंचती है। मंत्री ने कहा कि उन्हें एयरटेल द्वारा मोबाइल सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं थी। मंत्रालय ने बढ़ोतरी के अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ा है और डेटा मूल्य के प्रभाव की जांच करने की जरूरत है। भारतीय एयरटेल ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम समेत 8 सर्कल में 28 दिनों की मोबाइल फोन सेवा योजना के लिए अपनी न्यूनतम रिचार्ज की कीमत लगभग 57% बढ़ाकर 155 रुपए कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ने की कीमत में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। उसके साथ ही राज्य में गन्ने का मूल्य बढ़कर 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश के किसान गन्ने के राज्य अनुशंसित मूल्य को 262 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे थे। नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी। खट्टर ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि कीमतों में बढ़ोतरी की गई और अब उन्हें अपना गन्ना मिलों में लाना चाहिए ताकि मिले सुचारू रूप से चल सकें। चीनी मिलों का बंद होना ना तो किसानों के हित में है और ना ही मिलों के। चीनी मिलों में पेराई हाल में बंद हो गई थी, क्योंकि विरोध कर रहे किसानों ने राज्य की 14 मिलों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर ताला लगाकर गन्ने की आपूर्ति बंद कर दी थी। किसान गन्ने के राज्य अनुशंसित मूल्य को 362 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे थे। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है, लेकिन हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कीमत दे रहा है। वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि समूह ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से किया गया है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के अनुसार उसके 2 साल के शोध के बाद पता चला कि 17,800 अरब रुपए मूल्य वाला अडानी समूह देश में खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। ये रिपोर्ट अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के आवेदन के लिए खुलने से ठीक पहले आई है। कंपनी का FPO 27 जनवरी को खुलकर 31 जनवरी को बंद होगा। अमेरिकी न्याय विभाग और 8 राज्यों ने मंगलवार को गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा रोधी कारोबारी गतिविधियों के चलते मुकदमा दायर किया। मुकदमे में ऑनलाइन विज्ञापन के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गूगल के कथित एकाधिकार को तोड़ने की मांग की गई और आरोप लगाया गया कि इससे विज्ञापन दाताओं, उपभोक्ताओं और यहां तक कि अमेरिकी सरकार को भी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार ने शिकायत में आरोप लगाया कि गूगल अधिग्रहण के जरिए ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में प्रतिद्वंदियों को बेअसर या खत्म करना चाहता है। गूगल की प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं के चलते विज्ञापन दाताओं के लिए दूसरे प्रतियोगियों की पेशकश का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में अब बड़ी तकनीकी कंपनियों पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। प्रमुख फार्मा कंपनी सिप्ला का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर की तीसरी तिमाही में 7% बढ़कर 808 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में ये जानकारी दी। सिप्ला ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 757 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी की कुल परिचालन आय 5479 करोड़ रुपए से बढ़कर 5810 करोड़ रुपए हो गई। दिसंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 2311 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान अवधि में ये 2176 करोड़ रुपए रहा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।